તારીખ 19/2/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 108 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 92.
વિશિષ્ટ દર્શન છે એ સંબંધે ખાસ વાત કરી છે. જૈન ધર્મની મહત્તા એ છે કે મોક્ષના કારણભૂત સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર વગેરે શુદ્ધ ભાવની પ્રાપ્તિ તેમાં થાય છે. તેમાં થાય છે એટલે અન્ય સંપ્રદાયમાં એ નથી થતી એમ કહેવું છે. કઈ લોગ એસે પ્રશ્ન કરતા ક્યાં મુક્તિ જૈન ધર્મ સે હી હોતી હૈ, અન્ય ધર્મ વાલે મુક્તિ મેં નહીં જાતે નહીં જા સકતે ક્યા, ऐसा पक्षपात क्यों, अकेले जैन धर्म संबंधित इतना पक्षपात क्यों, तो ये कहते हैं कि जैन धर्म की महत्ता यह है कि मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि शुद्ध भाव की प्राप्ति उसमें ही होती है. और दूसरे संप्रदाय में मुक्ति का मुक्ति शब्द है, मुक्ति की बात चली है, भले ही मुक्ति का स्वरूप यथातथ्य नहीं है लेकिन वो मुक्ति और आत्मा दोनों को मानते हैं, आत्मा और आत्मा की मुक्ति को मानते हैं. फिर जो मुक्ति के कारण जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उनको नहीं जानते, जानते नहीं तो मानते तो कहां थे कहां से हो. यहां भी ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा होता है, जानते ही नहीं तो मानते कहां से हो, तो पता ही नहीं सम्यक दर्शन किसे कहना, सम्यक ज्ञान किसको कहना, सम्यक चारित्र किसको कहना, तो पता ही नहीं. उन लोगों तो कहां से पता हो रहे, कहलाने वाले जैनी है उनको भी वायु व्रत से जब अंगीकार करते तो तप मान लेते, तो चारित्र मानते उसको कि देखो दीक्षा लिया तो चारित्र अंगीकार कर लिया, व्रत धारण किया तो उतना चारित्र तो आया. संप्रदाय में भी ये बात चलती है.
गौतम गण रहते हुए पता नहीं था कौन जन्म आया,
गौतम गंधर्व कैसे हुए तो उनके पता ही नहीं. गुरुदेव एक दृष्टांत बहुत बड़ा अच्छा देते थे कि ठंड के दिन थे, कुछ लोग पहले तो पैदल मुसाफरी करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते तो पैदल चले जाते थे, अपने गांव जाना है अपने उत्तर गांव गांव में काम है. रास्ते में रात हो गई, ठंड बढ़ गई, सोचा कि चलो चलते चलते तो और ठंड लग जाएगी, थोड़ा ये लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके जला करके थोड़ा ताप करके फिर आगे चले. तो कुछ पेड़ पर बंदर भी बैठे हुए थे, उनको भी ठंड लग रही थी. उन्होंने सोचा कि ये तो बराबर है, गर्मी आती है इसमें से, उन्होंने भी लकड़ियां से बैठा इकट्ठी करी, लेकिन वो जलावे कहां से, वो आज्ञा आता है ना, क्या कहते हैं आप में आज्ञा जीवन में वो दिखता है, जुगनू जुगनू कहते हैं. वो जुगनू को पकड़ पकड़ करके रखे लकड़ी, जुगनू को पकड़ पकड़ करके रखे ना उसमें, तो ठंडी में मर गए. ऐसे नकल करते हैं अज्ञानी जीव बाह्य चेष्टा की,
नकल करते हैं,
नकल करते हैं. कि देखो आदिनाथ भगवान ने ये व्रत 6 महीने का वो होता है वर्षी तप कहते हैं, 12 महीने में 2 वक्त तो वर्षी तो 6 महीना तो उपवास कर नहीं सके, समय नहीं, चलो एक दिन खाओ एक दिन नहीं खाओ, 6 महीना निकल गया, 12 महीने में 6 महीना खाया 6 महीना नहीं खाया, एक दिन खाया एक दिन नहीं खाना, तो 6 महीने के दिन खाने में हुए 6 महीने के दिन नहीं खाने में हुए, ऐसे टोटल लगाए। नकल करनी है तो कैसे भी नकल कर ले, बराबर नकल नहीं हो तो जैसे हो गए वैसे करो। और भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तप किया, हम भी करें, ऐसे नकल करने से कोई असल चीज तो मिलती नहीं।
उनको दिव्य दुनिया खेलने से पहले से मैं दर्शन आदि हो गया
था। किसको?
गौतम
नहीं, वो तो पहले अन्य मत में थे,
तो वो मतलब मुनि वगैरह बने तो कुछ समझ नहीं था।
नहीं, भगवान की वाणी सुनी और निमित्त पड़ा,
तो मतलब वो मिथ्या दृष्टि थी। हाँ, की लायकात में
गृहित मिथ्या दृष्टि थे
उस समय की बात है,
जब इंद्र बुद्धि थे गृहित मिथ्या दृष्टि थे, जब समर शरण में आए तो मान स्तंभ के वहां से गुजरे, उस वक्त इनकी जो जब जो गृहित मिथ्यात्व की जो स्थिति थी वो छुट गई,
वो छुट गई,
मैं कुछ बड़ा आचार्य हूँ, मैं कुछ ऐसा बड़ा ये हूँ, ये बात निकल गई, ये बात यहाँ की कोई दूसरी बात है, ऐसी अलौकिक रचना अलौकिक बातें अलौकिक सब दिखती है, जो अतिशय वगैरह उसको अलौकिक मालूम हुआ, वहां से परिणाम हम फिरने लगे। बाद में सम्यक दर्शन हुआ, बाद में जो भी उन्होंने भावनी की दशा आई, बाद में केवल सब बाद में
होने के बाद में हुआ क्या?
हाँ, इसके पहले कैसे
ये तो प्रश्न
ई निमित्त पड़ा है।
फिर वो गणधर के पद पे बाढ़ना है
तो हाँ, तो भावनी की संत हुए तब आ रहे,
फिर गणधर के पद पे आने से पहले ही दिव्यधनी गिर गई,
वो तो पता नहीं है अपने को क्या
मदद, थोड़ा लॉजिक से कैसा लगता है,
कब हुई कैसे हुई, समय दर्शन कितने काल के दिन में हुआ, कितने समय में हुआ, अपनी दशा कितने काल में आ गए, वो कोई इतिहास मिलता नहीं है इसका, तो अपने जानकारी में नहीं है कोई बात, लेकिन हुआ है तो भगवान के और भगवान की वाणी के निमित्त से जो कुछ हुआ है उस वक्त वही कारण निमित्त में पड़ा है, उपादान तो खुद का था ही, निमित्त योग्यता खुद की थी, तो पात्रता तो आएगी, भगवान को दर्शन करते ही पात्रता आएगी, तो भगवान का दर्शन करते शुभ भाग हुआ ये बात नहीं किया, पात्रता आई ये बात है इसमें, जिस वक्त वाणी में नहीं खिली हो उस वक्त तो जो समोसरण में भगवान विराजमान है बिना वाणी, उस वक्त तो जैसे अपनी प्रतिमा है वैसे ही है, जिन प्रतिमा दे और साक्षात जिनेन्द्र में क्या अंतर है कि एक वाणी नहीं है उतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर
नहीं
नहीं है, दर्शन करते ही इतना फर्क पड़ा है।
जैसे समुद्र में आए जो शंकाएं होता है आते ही उनकी शंकाएं अपने आप ही
छुटके कह नहीं सकते, कह नहीं सकते दर्शन से हुआ या वाणी खिली तब हुआ कह नहीं सकते, ये बात कैसा भी बना हो परिणाम उनके उपादान से फले, निमित्त था पूर्ण निमित्त था सामने, उपादान भी उतना ही तैयार, दो ही बात थी, काल कोई भी हो सकता, वो तो सब कब हुआ कैसे हुआ कितने दिन में हुआ कितने टाइम में हुआ वो तो इन मटेरियल बात है सब, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। महत्व तो यह है कि अन्य दर्शन में से आए थे, इतने बड़े महान आचार्य जैसे थे, हजारों शिष्य थे जिनके, और बहुत तगड़ा जिसका अब्सॉर्प्शन था और अहंभाव भी बहुत हो गया था, फिर भी बदले तो इतने तेजी से बदले। तो समीर दर्शन भावलिंगी संत और उसी चरम शरीरी थे, मोक्ष में चले गए। काल बदल गया, पंचम काल आ गया। क्या है, काल बदल गया, चतुर्थ काल पूरा हो गया। भगवान महावीर स्वामी तो 3.5-4 महीने बाकी था, 3 दिन, 3 महीना और 20 दिन कुछ बता रहे हैं। पंचम काल में गए, जिन गणधर जो थे, गौतम स्वामी, नंदी स्वामी, सुधर्म स्वामी, वो तीन कुंडली को पंचम आने में गए। उतना उत्पादन में ताकत थी, इतनी ताकत थी, काम किया, इनका तो परिभ्रमण खत्म हो गया। भैया परमानंद में सिद्धार्थ विराजमान, तो ये मोक्ष के कारणभूत सिद्ध दशा के कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि है। ऐसे जो शुद्ध परिणाम है, ये शुद्ध परिणाम जैन धर्म में ही होते हैं। जैन धर्म के अलावा इसका विचार भी नहीं, जानकारी भी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मान्यता का तो सवाल पैदा होता नहीं, आचरण होने का कोई सवाल नहीं। उससे ही जैन धर्म की श्रेष्ठता है, कोई श्रेष्ठता है, महत्ता है, अद्वितीयता है। श्रीमद जी ऐसे कहते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तरवार होती नहीं, कभी जगह ही नहीं हुआ, तो वैसे विश्व में दो जैन नहीं है, विश्व में दो जैन नहीं है, एक ही जैन है। ऐसे कहते हैं, अद्वितीय है। अभी तो कोई ये कहते हैं वो पंथी या स्वतांबर या देवंबर या तेरा पंथ स्थान, दो जैन नहीं होते कभी, एक ही जैन होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं, दूसरे होते ही नहीं कभी। ऐसा बहुत शुरू शुरू में बात किया है, पूर्व संस्कार लेके आए थे और बचपन से ही बहुत विचारधारा सुंदर थी। रातिस्मरण ज्ञान तो 7 साल की उम्र में हुआ है और करीब 12-14 साल से उनकी विचारधारा चालू हुई है। 15-16 साल की उम्र में तो बहुत परिपक्व विचारधारा है। 24 साल में सम्यक दर्शन दिया तो 10 साल करीब करीब उन्होंने, 9-10 साल में जो विचारधारा है बहुत सुंदर है, मैंने बिल्कुल अनुरूप है, सम्यक ज्ञान के अनुरूप सब इनके विचार है, ऐसी विचारधारा। हाँ, संस्कारी थे, अभी तो कोई सम्यक ज्ञानी मिले नहीं थे उनको, लेकिन सतपुरुष के निमित्त के विषय में मुमुक्षु जीव को सतपुरुष का योग कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में श्रीमद जी ने जितना लिखा है उतना किसी सतपुरुष दूसरे महात्मा ने नहीं लिखा। गुरुदेव की वाणी में इतना आया है, न दीपचंद जी की वाणी में इतना आया है, न टोडरमल जी की वाणी में इतना आया है, ऐसा इतना आया है। सत्पुरुष और सत्समागम के विषय में जो उन्होंने प्रकाश डाला है, इसका जो महत्व दर्शाया है, ये ताजुब की बात तो यही है इसमें कि अगर उसको कोई मिल गए होते और फिर लिखते होते तो लोग आरोप कर देते, कि क्या है, उनको तो इनसे लाभ हुआ इसीलिए उनका तो ठिकाना नहीं रहा, जैसे सोगानी जी ने लिख दिया। लेकिन उनको तो कोई मिले नहीं थे फिर भी इतना कहां से लिखा और कहां से निकाली वो चीज, एक बार आश्चर्यकारी घटना है। सत्पुरुष क्या चीज है और इसका जो योग मिलता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। संसार अटवी में, अटवी मैंने घोर जंगल को अटवी कहते हैं, संसार अटवी में रात्रि को ये जीव भुला पड़ गया है। घोर जंगल और रात्रि दो बात, और कोई रास्ता पर नहीं खड़ा है। रास्ता पर खड़ा हो तो रास्ता पर तो चले कहीं कोई कई दिशा में, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पगडंडी नहीं मिल रही है उनको, स्थिति में खड़ा है। ऐसे जीव को अगर कोई मिल जाए कि भैया ये जो नजदीक में ही तुम्हारा घर है चलो मैं ले जाऊं, इतनी बात है सत्पुरुष की, बहुत लिखा है। ये थोड़ा संकलन भी इस विषय में थोड़ा क्या है, वो ज्ञानामृत है हिंदी, हिंदी भी उसका हिंदी का उसी विषय का संकलन है करीब करीब। हाँ, वो श्रीमद् जी के सत्पुरुष के विषय में कुछ बातें हैं संकलित कर, है तो बड़ा ग्रंथ में से लिया है,
उसमें से कलेक्शन
है,
उसमें से कलेक्शन
कलेक्शन है, संपादन उसमें है, उसका हिंदी भी है गुजराती भी है। जैन धर्म से उनकी श्रेष्ठता यही है कि उसमें मुक्ति होती है। आजकल भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती चैत्र शुद्ध तेरस को आती है, लोग यही भाषण करते हैं और भगवान महावीर ने अहिंसा दर्शाई, भगवान महावीर ने मुक्ति का मार्ग बतलाया है। दूसरे जीवों की रक्षा करना ऐसा बतलाया है, ये मुख्य बात नहीं है, ये तो बहुत गंभीर बात है। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, ऐसी सामान्य जो बातें हैं ऐसी तो बहुत सी आई दिव्य ध्वनि में, लेकिन जो खास बात है वो तो ये है कि मुक्ति का मार्ग बतलाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बतलाया है, कैसे परिभ्रमण छूट जाए वो बतलाया है, इससे उसकी श्रेष्ठता है। ये दूसरे जीव की अहिंसा का विकल्प है, हिंसा नहीं करना, अहिंसा रक्षा होना, ये पुण्यबिंद का कारण है, ये शुभ भाव का या पुण्यबिंद का कारण। वो तो अन्य मत वाले भी करते हैं थोड़े बहुत, उतना तो थोड़े बहुत अन्य मत वाले भी करते हैं पुण्यबिंद का कार्य, तो मुक्ति का मार्ग जैन धर्म के अलावा कहां है, और कोई जगह है नहीं। इसलिए हे जी, ऐसे शुद्ध भाव द्वारा ही, उस शुद्ध भाव से ही जैन धर्म की महिमा जान करके तू उसे अंगीकार कर, भले प्रकार से तू उसे अंगीकार कर। संप्रदाय में कुल में जन्म हुआ इसलिए अंगीकार हो गया, वो बात भी नहीं है, तो बात भी नहीं है, हम तो शुरू शुरू में उसमें प्रवेश हुआ तो यही कहते थे कि जैन तो कभी जन्मते नहीं, जन्म से जैन होते नहीं, जैसे साधु कोई जन्मते हैं क्या,
नहीं
साधु तो होते हैं, वैसे जैन तो होते हैं, जैन का जन्म नहीं होता है, वो तो होते हैं ऐसे है।
शुद्ध होता है,
ऐसा बनना होता है।
जैसे कहते हैं भगवान जन्मते नहीं बनते ऐसे ही जैन जन्मते नहीं बनते
बनते हैं, साधु भी जन्मते नहीं बनते, ऐसे जैन बनते हैं ऐसे कहते थे। उसको पता नहीं था कि जो सुमेर दर्शन लेकर आते हैं वैसे तो वो तो जैन जन्म ही में है, लेकिन वो अपवाद है, वो तो हर बात में अपवाद तो रहता है। ऐसे पंच परावर्तन बोलते हैं, तो पंच परावर्तन में सब क्षेत्र में सब जगह में जीव का जन्म मरण हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र भी बाकी है और कुछ पद भी बाकी है उसमें उसका जन्म मरण नहीं हुआ है। जैसे सर्वार सिद्धि, तो सर्वार सिद्धि में जीव नहीं हुआ कभी, अनंत परावर्तन हुए उसमें अनंत बार, क्या एक बार भी नहीं हुआ सर्वार सिद्धि का देव? तो ये अपवाद रह जाता है इस कथन में। ऐसे ये बात कई बातें जनरल बोली जाती है, जैसे 100 गाय खड़ी हो उसमें एक भैंस भी हो, भैंसा बोलेंगे क्या? सब गवा खड़ी है वहां तो सब गवा, ऐसे ही बोल देंगे, वो अपवाद है कि एक है उसमें भैंसा। ऐसे इसलिए ही ऐसे शुद्ध भाव द्वारा ही जैन धर्म की महिमा को पहचान करके जान करके तुम उसे अंगीकार कर, अंगीकार करना जान लेना उतनी बात नहीं कही कि तुम जान लेना सम्यक दर्शन कैसा है, सम्यक ज्ञान कैसा है, सम्यक चरित्र कैसा है, सीख लेना जान लेना, ऐसा नहीं है, तुम उसे अंगीकार कर। जानने का समझने का कोई हेतु है या ऐसे ही जानने पूर्ता हेतु है क्या? ये तो गलत बात है, उसके पीछे अंगीकार करने का हेतु होता है, पर उसी हेतु वश भी जानने की प्रवृत्ति हो सकती है जो सही हो सकती है, बिना हेतु ऐसे हेतु बिना जानने की प्रवृत्ति ठीक नहीं रहती है।
प्रकाश बहुत
डाला
अंगीकार करने का,
वो तो आएगी ज्ञानी की वाणी में, यही बात आएगी। वो तो बार बार कहते हैं, वो पुरुषार्थ के विषय में सुगानी जी कहते हैं तो बार बार यही कहते हैं, क्योंकि उनके परिचय में तो अपने मुख से लोग ही आए चर्चा करने के वास्ते, जो आते थे मैंने देखा कि लोग पढ़ते हैं सुनते हैं चर्चा करते हैं, कोई कारोबार छोड़ के परिवार छोड़ के सौंदर्य निवृत्ति लेकर के बैठे हैं और उसी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं बहुत सुनते हैं चर्चा करते हैं सारे दिन यही चलती है यहाँ, तो फिर भी पुरुषार्थ के विषय में कोई गड़बड़ी है, उनके तो नजर में बात आ जाती है, ऊपर बैठे उनके नजर में तो सब बात आ जाती है। एक खास बात ये कही कि भैया सुन करके संतुष्ट मत होना कि अच्छा ये बात हमको समझने में पहले नहीं मिली थी अब तो मिली, बड़ी अच्छी बात है, संतुष्ट मत होना। किसी भी ज्ञान की क्षोभक्षम की हो या चारित्र के क्षोभक्षम की हो, किसी भी पर्याय में संतुष्ट होना ये दर्शन मोह की तीव्रता का द्योतक है, न्याय दर्शन मोह तीव्र हो जाता है। एक तो पर्याय बुद्धि है, पर्याय मात्र को अवधारण करता है, इसमें थोड़ी कुछ विशिष्टता हुई और उनको अच्छा लगा, दर्शन मोह तीव्र हो गया, पर्याय बुद्धि तीव्र होती है, वहां मिथ्या तो दृढ़ हो जाता है। उन्होंने बार बार ये बात कही संतुष्ट मत हो। किसी ने ऐसा पुरुषार्थ प्रश्न पूछा कि समझते तो हैं लेकिन पुरुषार्थ क्यों नहीं उठता है, कि समझते हैं लेकिन संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो देखा नहीं कभी, इसका विचार भी नहीं किया। पुरुषार्थ इसलिए नहीं उठता है कि संतुष्ट हो जाता है सुनते ही समझ में आते ही, कईयों को तो समझ में नहीं आती फिर सिर थोड़ी ज्यादा करने पड़ती उसको, फिर थोड़ा परिश्रम करने के बाद समझ में आ जाती है तो उनको संतुष्ट हो जाता है कि चलो थोड़ा अपना परिश्रम तो सफल हुआ, पहले नहीं समझते थे, अब समझ में आ गई, ये संतुष्ट होता है। ये दूसरी भूल हो गई बड़ी, ये भूल कभी नहीं करना, ये बात है। और इसका भी ये जवाब दिया है कि ये विकल्प चलता है, तत्व ज्ञान विषयक विकल्प विकल्प चलते हैं बहुत, दूसरे विकल्प से हट गए हैं, दुकान छोड़ दी है, वो कर दिया, वो कर दिया। अब फिर विकल्प में दुख लगना चाहिए तो दुख क्यों नहीं लगता है, तो उसका जवाब भी वही दिया है,
तुम्हारा
तो संतुष्ट हो गया है, विकल्प में तो संतुष्ट है इसलिए तुझे दुख नहीं लगता है। और ऐसे तत्व ज्ञान की वैचारिक परिस्थिति में कषाय तो मन रहता ही है, होता ही है सहज रूप से, क्योंकि ये विषय कषाय के अभाव वाला है, इसलिए कषाय तो सहज मंद हो जा रहा है। जैसे ये एसिड होता है तेजाब, तो उसमें पानी डालकर डाइल्यूट कर देते हैं, उसको मंद कर देते हैं, वैसे तो हाथ लगाए तो जल जाए, बहुत तेज है उसकी प्रकृति, लेकिन पानी डाल करके उसको डाइल्यूट मैंने जीरा करके हल्का करके फिर भी वो घेने को लगाते हैं तो साफ हो जाते हैं, सोने के नाली के जो आभूषण है उनको साफ करने के लिए डाइल्यूट करते हैं तेजाब को। ये घर में आजकल साफ करते हैं फर्श वगैरह, तो सीधा तो हाथ लगा नहीं सकते साफ करने में, तो हाथ जल जाए तो उसको पानी डाल करके उसको मंद कर देते हैं, फिर उसका प्रयोग कर देते हैं, फिर भी वो मैल को इतना धो देते हैं। ऐसे ही शक्ति का प्रबल कषाय अभाव, कषाय कषाय का जिसमें क्षयकरण से स्वभाव है, खत्म कर देवे, निरोध तक की कषाय कर लीजिए लेकिन खत्म कर देवे उसको, साफ कर देवे मैदान उसका, जितना भी कषाय का जंगल हो जला दे उसको, इतना प्रबल कषाय अभाव स्वरूप आत्मा है, उसकी बातें भी कसाई को ठंडी करती है, इतनी जलक चीज है ये। तो कसाई तो सहज मंद होता है, कसाई मंद हो गए उस वक्त साता वेदनी का उदय रहता है, जीव को थोड़ा दुख के बजाय विकल्प में सुख महसूस होने लगता है। कसाई की मंदता में दुख होना चाहिए, उसको सुख होता है, साता वेदनी का उदय है, तो ये प्रकृति के संग में चला गया। ज्ञानी कहते हैं कि यह जीव प्रकृति के संग में चला गया, उदय के साथ जुड़ा हुआ है, पर सम्यक दर्शन तो अनुदय परिणाम है। पंचाध्यायी में ये शब्द संस्कृत में लिया है, अनुदय परिणाम है, उदय वाला परिणाम नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उदय से भिन्न पड़ गया, उदय के साथ नहीं जुड़ा तब ये परिणाम हुए हैं, इसलिए उसको मुक्ति के परिणाम भी कहते हैं, क्योंकि बंद में नहीं आए हो। अबंध परिणाम कहो, मुक्त के परिणाम कहो, आंशिक मुक्ति कहो, समय की बात।
सुनना तत्व चर्चा करना सब विषय सेवन है, निहाल भाई ने सुनना तत्व चर्चा करना ये सब विषय सेवन, ऐसा निहाल भाई ने बोल में
शुभ को एक जाति में ले जाते हैं, इसलिए वही कहते हैं। जैसे दुकान पे वही पता खोलते खोल करके बैठा था, इधर सोनगढ़ में आकर के फिर इस किताब को खोला दुकान एक दुकान बंद कर दिया, दूसरी दुकान चालू कर दिया,
अंदर में ले जाने के लिए,
अंदर में ले जाने के लिए बहुत सुंदर बात है, वरना तो यही छोड़ जाएगा कि चलो व्यापार धंधा तो नहीं करते, शास्त्र तो पढ़ते हैं ना, और आचार्यों के शास्त्र पढ़ते हैं बड़े बड़े, तो ये दुकानदारी में आ जाता है, उसको उखाड़ने के लिए वहां बहुत रस से जाता है, बहुत रस आता है, छोड़ जाता है ना, तो यहां से उखाड़ देते हैं कि ये क्या धंधा कर लिया, एक दुकान बंद कर दिया, दूसरा दुकान खोल दिया, अब क्या कर रहा है, ये तो दुकानदारी चालू की चाल देते हैं, इससे अशुभ कर्म बनते थे, इससे शुभ बनेंगे, बंधन तो दोनों ही बंधन है, क्या फायदा हुआ? वो शैली बहुत तीखी है उनकी, तेज है, परिणति तेज थी, भाषा भी ऐसे ही निकली है।
लग जाए तो फायदा करने वाली कड़वी दवाई, जब
हाँ लागू हो जाए दवाई
पी ले एक बार,
हाँ तो उनका बेड़ा पार हो जाए। ऐसी चीज जैन धर्म में ही है ऐसा कहते हैं, इसलिए उसे तू अंगीकार कर और राग को और पुण्य को धर्म न मान। सारी दुनिया और संप्रदाय बुद्धि वाले भी पुण्य में धर्म मानते हैं और ये चीज ही नहीं है, इसलिए ये विद्वान लोग पंडित लोग गुरुदेव के परिचय में आए तो ताजो अरे ये चीज को अपने साथ। पात्रता में उससे कसाई आ जाता है, दो बात, बात तो है सो है, लेकिन एक को हित का कारण होती है, दूसरे को उतना ही हित का कारण होती है, जिसको उतना बड़ा हित का कारण हुआ वो बड़ा हित का कारण हो जाती है, क्योंकि सत्य का ही विरोध आता है, उसको सत्य का ही विरोध आता है, नीति अहित भी बड़ा होता है इससे। जैसे जिनकी पात्रता है वैसा ही होगा, चीज तो जगत में रहने वाली है, ये चीज जगत में से चले जाने वाली कभी नहीं है, ये तो हमेशा रहने वाली है। सत का सर्वनाश हो गए विश्व में, ये तो कभी बनने वाली चीज नहीं है, रहने वाली चीज है। जो पात्र होंगे वो ठिकाने पे आ जाएंगे, जो अपात्र होंगे वो और अपना नुकसान करके भटकते रहेंगे। बस
इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि वह न हित का कारण है न अहित का कारण है, न वो हित का कारण है न अहित का कारण है, पात्रता का उसमें उपचार किया जाए,
बस इतनी बात समझ सकते, इतनी बात है। बस तो
हो गया तो इसका कारण क्या,
मतलब जो चीज है सो है, इसका मतलब क्या है? कुछ चीज तो जो है सो है, अपना गुण धर्म अपने में है हर एक को, लेकिन एक को नुकसान का निमित्त बन जाती है, एक को लाभ का निमित्त बन जाती है, तो आरोप आता है उस पर, बाकी तो जो चीज है सो है, उसका नाश होने वाला नहीं है कभी।
नहीं ऐसा कहें वो हित का कारण ही है, अहित का कारण तो उसने बनाया, तो हित का ही कारण है,
ऐसे तो उसका गुण ऐसा है, उसमें अहित होने का निमित्तत्व नहीं है, निमित्तत्व जो होता है ये नहीं है इसमें, इस प्रकार का ये बात जरूर है,
हाँ
ये बात जरूर है, निमित्तत्व तो एक ही प्रकार का है। फिर आरोप करते हैं इसके अवलंबन से उल्टा पड़ता है, ऐसा उल्टा अवलंबन लेता है तो उसको ऐसा बोल देते हैं, निमित्तत्व ऐसा नहीं है,
वो दिव्य ध्वनि नरक गति के लिए निमित्त ऐसा नहीं कह सकते,
नहीं वो हम ही नहीं सकता, इस पर निमित्तत्व है नहीं, देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष में कोई ऐसा निमित्तत्व है ही नहीं, अगर निमित्तत्व है तो दूसरे जीवों का हित होने में निमित्त पड़े, उस प्रकार का निमित्तत्व है, उतनी बात है, ऐसी बात है। ऐसा ध्यान कर पुण्य को धर्म न मान, राग को और पुण्य को धर्म न मान।
ऐसे जिन प्रतिमा जो है उसमें का निमित्तत्व है
ही नहीं, नहीं ये तो देव तत्व में आया ना, जिन प्रतिमा कहते हैं लेकिन वो तो प्रतिष्ठित होने के बाद जिनेन्द्र ही है, प्रतिमा नहीं रही फिर।
जिन प्रतिमा जिन सार
तो देखते ही जिनेन्द्र है ऐसा ही देखने में आता है, दूसरा भाव ही नहीं आता, वो तो जिनेन्द्र ही है, प्रतिमा प्रतिमा बात नहीं है, जिनेन्द्र ही है, बस बात खत्म हो गई, प्रतिष्ठा होने के बाद जिनेन्द्र हो गया, बात खत्म हो गई।
तो एक को स्थापित करने का नहीं स्थापित करने का वो सब बात उठ गई।
सवाल ही पता नहीं, इसमें निमित्त तो है ही नहीं, कि इसके निमित्त से कुछ गड़बड़ी होगा, इस सवाल ही पैदा नहीं। एकमात्र शांति का और का कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। सीधी बात, इसलिए ये दर्शाने के हेतु तो पुण्य के अति से खड़े हो जाते हैं कि जैसे जहां तीर्थंकर पैदा होते हैं, गर्भ में आते ही सब जगह अगल बगल के क्षेत्र में और उस शहर में तो रत्नवृष्टि हुए, अकाल भी हुए, पूर्णी हुए, ये सब प्रकार के क्या कैसे होती है। और भगवान का जन्म होते ही सातवीं नौवीं तक करंट जाता है, उसका शाखा का करंट जाता है। अभी तो छदम स्थाय चतुर्थ गुण स्थान धारी है ना, और उसका शाखा का करंट जाता है सातवीं नारकी तक है, सात राजू नीचे जाता है। केवल दुख का क्षेत्र है, वहां भी शाखा उपस्थित नहीं हो क्षण भर के लिए। तो ये बताता है कि कितनी अनंत शांति के ये एक दूत है, कहते हैं शांति दूत आए, कितनी अनंत शांति के ये दूत है, ये इसकी सब चिन्ह है, लक्षण है। जैसे 10 इंच बारिश होने वाली हो, घंटा भर में पानी पड़े इतना गिरे ऊपर से, तो इसके पहले 2 घंटे पहले तो 112 डिग्री का ताप हो तो ठंडक हो जाए, इतनी हवा चलती है पहले। यही पूर्व भूमिका में बनते हैं, ये इतिश्री यही सब चीज दिखलाते हैं, कितनी शांति का ये विषय है। अनहद शांति भीतर में हो रही है, शांति का गोला है, पिंड है। तो अगर पुण्य पर इसका कोई निमित्त नैमित्तिक असर आता है तो इतना बढ़ जाता है कि 14 ब्रह्मांड में शांति फैलती है एक क्षण के लिए। तो सिर्फ नरक में ही होती नहीं, 14 ब्रह्मांड में हो जाती है।
उस काल में बहुत नाच की संगत भी प्राप्त कर लेते हैं।
हाँ, कर लेते हैं, यही बन जाता है। संस्कारी जो होते हैं वो कर लेते हैं बिना संस्कार पड़ने, ये निमित्त पड़ जाता है। उतना तो जिनके अतिशय में निमित्त तत्व है, खुद में तो हो, उसमें क्या कहना खुद का तो कहना ही क्या। ये अतिशय से बहुत सुन, बहुतों को तो अतिशय से होता है। ये गौतम मंडल में अगर वाणी खेली के पहले अगर समय दर्शन हो सकता है तो अतिशय के पहले हो सकता है, अतिशय से हो सकता है, ऐसी बात है, असंभव नहीं है। जैन धर्म में तो सर्वज्ञ भगवान ऐसे कहते हैं कि पुण्य को ही धर्म मानते हैं, वो केवल भोग को ही चाहते हैं। जो लोग पुण्य को धर्म मानते हैं वो केवल भोग को चाहने वाले होते हैं। इसलिए मंडल ने एक सूत्र दे दिया कि जिसको पुण्य की रुचि है उसको जड़ की या भोग की रुचि है, बस खत्म बात। एक सूत्र दे दिया है, भरत संप्रदाय वाले, लेकिन वो साफ बोल दिया है कि जिसको पुण्य की रुचि है उसको जड़ की रुचि है, उसको भोग, उसको धर्म की रुचि है ही नहीं। अस्ति से ऐसी रुचि है, नास्ति से उसको धर्म की या आत्मा की रुचि है ही नहीं। ये अनात्म तत्व है, पुण्य तत्व वो अनात्म तत्व है, आत्म स्वभाव से विरोधी तत्व है। जिसको विरोधी के पक्ष में रहना है वो उधर नहीं आ सकता, आत्मा के पक्ष में ही नहीं आ सकता, उसको तो पक्ष ही नहीं होता, फिर पक्षांतिक्रांत होने का तो सवाल भी होता, ऐसे बात। तो उसको बोल दिया कि उसको अरुचि है आत्मा की, उसको अपने आत्मा के प्रति द्वेष बरतता है, अरुचि है मैंने द्वेष बरतता है, ये बात बहुत जोर से निषेध किया है। और निषेध समय सार में विष्कुंभ करके आचार्य महाराज ने किया है कि ये विष्कुंभ है, प्रतिक्रमण आदि के भाव विषकुंभ है।
वो तो वाली संत के जो होते हैं उनकी बात ये है।
गलत तो नहीं कही, गलत तो नहीं कही, सही तो कही ना,
उसके ये सब है तो
जब इनके लिए है तो हमारे लिए तो और समझना चाहिए। सुगानी जी ने लिखा है कि जब आचार्य महाराज कहते हैं कि शास्त्र में परिभ्रमण करने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है, जब इनके लिए वो खुद के लिए ऐसा सोचते लिए हैं, तो हमारे लिए तो इससे ज्यादा थोड़ा सोच लेना चाहिए। ऐसा उठाया, किस दृष्टिकोण से इस चीज को अंगीकार करना, ये
भूल बात,
ये विवेक की बात है।
ये तो कहते हैं गणधर को भी आता है, उनकी तरफ ऐसा भी कहते हैं।
हाँ कहते हैं, लेकिन उनको निषेध साथ में है, अकेला नहीं, निषेध के साथ आता है। और उन स्वयं को तो निषेध आवे ही नहीं, वो तो अवलंबन पकड़े,
उनको निषेध पूर्वक,
उनको तो निषेध पूर्वक आता है, और खुद को तो निषेध आवे नहीं, और बहाना पकड़े के गंधर को आता है तो मर जाए इनके पीछे। कोई पैसा वाला 500 रुपये का जूता खरीदे, लेकिन 400 की तो तनख्वाह हो गई, और 100 रुपया कर्ज का करें और 500 रुपये का जूता, वो जूता वो भी पहने, और फिर हो गए दर्द, और फिर दवाई के लिए पैसा चाहिए, क्या करें, मर जाना, फिर पैसा तो हो गए नहीं, कर्ज का पहले चुकाना, तो वो करते हैं हम करें ऐसे कैसे चले, गंधर्व करते हैं ऐसे कैसे चले, उनके पास तो पूंजी है,
नहीं है कैपिटल लेकर,
तो वो तो खर्च करेंगे तो उनको तो कोई नुकसान नहीं दिखेगा, और तेरी तो पूरी साफ हो जाएगी पूंजी, ये बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं देखा जाता, तो अवलंबन उल्टा लेता है। जैसे चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है, चक्रवर्ती को इतना है इतना है उतना है, अपने को तो कुछ नहीं है, वो तो बड़ा परिग्रही है, ये अवलंबन उल्टा लेने की बात है। उतना होने के बावजूद भी इसकी दृष्टि जो है वो शुद्धात्म तत्व में पड़ी है, और ज्ञान में वो भिन्न हो गया है, छह खंड को साधते नहीं अखंड को साधते हैं, उसको तो तू देखता,
ये बात पकड़ में नहीं आती,
ये बात पकड़ में नहीं आती। तो दिखाना चाहते हैं उस बात को और पकड़ते हैं दूसरी बात को, ऐसा क्यों होता है कि इनकी रुचि ऐसी है, जिस जीव की जैसी रुचि होती है वैसा उसको ज्ञान में दृष्टिकोण हो जाता है। ये रुचि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, ज्ञान पर इसका बहुत असर आता है सम्यक दर्शन के पहले। इस स्थिति है ज्ञान के, वैचारिक विचार के ज्ञान बहुत कमजोर है, ज्ञान में इतना बल नहीं है, तो जैसे रुचि होती है वैसा ज्ञान में दृष्टिकोण पलट जाता है, तो सही चीज को सुनते भी उल्टा पकड़ लेता है। इसका कारण यह है कि उसकी रुचि उल्टी है, इसलिए उल्टा पकड़ता है। जैसे कह दिया कि सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ होता है, बहुत दुर्लभ चीज है, लाखों करोड़ों में किसी एक को होता है, तो ये ऐसा उल्टा पकड़, ये तो बड़ी ऊंची चीज है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, हमें समझ नहीं हो सकती, हम तो पहले पुण्य करे वो करे वो करे वो करे। दीपचंद जी ने ये कहा कि इस काल में सम्यक दर्शन या सानुभव कठिन है ऐसा अगर कोई कहता है तो ये स्वरूप की चाह मिटाने वाला बहिरात्मा है, इसको स्वरूप की रुचि नहीं है, अरुचि हो गई है, द्वेष हो गया है, ये बात है, इसलिए वो धक्का मारता है, उसको निषेध करता है। मैंने कुछ पॉलिश ढंग से निषेध करता है, ये ज्यादा भयंकर है, सीधा निषेध करे तो कोई उसको बता लें कि भाई ये तो क्या करता है, लेकिन कुछ पाता पिंड ऐसा करता है कि रेडिएशन है,
सफेद दोष चोर है,
हाँ तो ये ज्यादा खराब है।
क्योंकि ये पुण्य का जो फल है भोग, उसके निषेध को तो हम सुनने को हुआ पड़ता है, लेकिन जो पुण्य भाव है का निषेध में जोर पड़ता है समझने में, ऐसा क्यों विरोधाभास है?
उसमें क्या है कि उसको पुण्य तत्व की पहचान नहीं, भाव की भी पहचान नहीं, पुण्य भाव में मलिनता है कि नहीं, मलिनता को आप चाहते हो क्या? मलिनता कोई कलंक है क्या? नहीं, भाव में, भाव मलिनता, भाव में कलंक है क्या? नहीं, तो फिर उसको कौन रखना चाहेंगे? अगर ये मलिन है, अपवित्र है, दुखदायक है, वो तो समझ में नहीं आएगा। तो मलिनता और अपवित्रता है वो समझ में आएगा, तो विपरीतता भी पकड़ने में आएगी कि इसमें विपरीतता है। ये आराधक परिणाम नहीं है, विराधक परिणाम है। आप इसको शुभ अशुभ से क्यों देखते हो? आराधक विराधक दृष्टिकोण से देखो ना, तो उसमें विराधकता है, विपरीतता है, दुख है और मलिनता है। तीन बोल तो लिए आचार्य महाराज ने आश्रय अधिकार करीपने विपरीतता और दुख और दुख कारण आश्रमों का जान करके उसके निवर्तन करते हैं ज्ञानी। तो ये उसको पहचान लेनी है और मान लिया है अभिप्राय में, शुरू से ही मान लिया कि वो ठीक है। अभिप्राय जिसका ठीक पड़े का हो पर फिर उदय हो तो रस पड़े ही पड़े। जैसे किसी को मिठाई अच्छी है ऐसा मान रखा है, फिर आई खाने में तो रस आएगा ही आएगा, ये बात साथ में हो ही जाएगी। ऐसा होता है पुण्य भाव में। और गुरुदेव ने ये सिद्ध कर दिया, करणानुयोग से बतला दिया कि जीव अशुभ में ज्यादा नहीं डूबा है, ज्यादा नहीं रुला है, वो तो शुभ में ज्यादा भटका है,
नरक से ज्यादा स्वर्ग है।
नरक के भाव से उनका देव का भाव असंख्य गुणा अनंत बार हुआ है। एक बार अनंत बार नहीं, दो बार अनंत बार नहीं, दो गुणा नहीं, असंख्य गुणा अनंत बार हुआ है। ये करणात्मक क्या फिगर दिए हैं, तो इसका मतलब ये कि जीव को कोई छिद्रपिंडी हुई है तो वो शुभ भाव से हुई है, पने से हुई है। और उसका कड़ा निषेध करने का यही कारण रहा है, कठोरता से निषेध इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी यहां से उसका पल्ला नहीं छूटता है, नहीं छूटता है, इसलिए कहते हैं इतने जोर से। फिर तो पात्रता अनुसार अच्छा बुरा लग जाता है, किसी को बुरा लग जाता है तो इसकी पात्रता ही ऐसी है। कहने वाले का अभिप्राय तो किसी का बुरा होने का है ही नहीं। जब अभिप्राय किसी का बुरा करने का नहीं होता तो वो कहने वाला निर्दोष है। जैसे चलते ही किसी को पैर लग जाता है तो अभिप्राय मारने का नहीं होगा तो वो निर्दोष है क्या नहीं है, बस खुद को ही पता चले क्षमा करना मेरा पैर लग गया। ऐसे आचार्य कहते हैं कि हम जो दोषों का निषेध करते हैं, किसी दोष के रुचि वाले को अच्छा नहीं लगेगा, हमें हमें क्षमा कर देना। वो भी क्षमा तो मांग लेते हैं कि हमें क्षमा कर देना, बात खत्म हो गई, निर्दोष है फिर। ऐसे पुण्य को धन मानने वाले केवल भोग को ही चाहते हैं। अच्छा, ये बात कितनी सत्य है, परम सत्य इसलिए है कि ऐसे पुण्य को धर्म मानने वाले को पुण्य उपार्जन होता है, उसका फल भी उसको आता है। और क्या हालत होती है उनकी, के बाद जाते हैं ग्रेवर तक और फिर एक इंद्रिय में पटकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? पुण्य को धर्म मान लिया, एकत्री सागर की स्थिति में गया, नवमी ग्रेवर, सोल स्वर्ग से ऊपर ग्रेवर के विमान है। अभी के सम्यक दृष्टि वैमानिक देव में जाते, इससे ज्यादा नहीं जाते आगे, दो सागर चार सागर की स्थिति से आगे भी नहीं जाते। वो एकत्री सागर की स्थिति में गए देवलोक में और फिर एक इंद्रिय में आए। यही कारण है कि वो भोग को ही चाहते थे, इसलिए जब भोग का उदय आ गया तो उतने रस वाले परिणाम हुए इनके, इनके बढ़ने चले गए। यही कारण होगा, पर वो बिना रह ही नहीं सकता, वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही कारण है इसका कि उसकी रुचि तीव्र हो गई थी शुरू से।
ज्ञान भोग की रुचि तक कैसे चले जाते हैं, भोगों की रुचि पड़ी रहे तो भी
वो सिर्फ खुली भोग की रुचि नहीं है, वो पता नहीं है उसका, उसको तो पुण्य की ही रुचि है, शुभ की ही रुचि है, तो ऐसा द्रविलिंग हो जाता है। तिल पुष मात्र परिग्रह परिग्रह नग्न दिगंबर होके 28 मूल को निरति का पालन करके शुक्र एशिया में जाते हैं वहां,
तो अभिप्राय में उसको भोगों की
अभिप्राय में परिणाम नहीं है, सीधे परिणाम नहीं है, अभिप्राय पड़ा है। वो अभिप्राय बुरी चीज है ना, अभिप्राय बुरी चीज है, सीधे परिणाम तो अच्छे दिखे लेकिन अभिप्राय में मलिनता पड़ी है उतनी कि एक इंद्र में चले जाएंगे, नरक निकोज में चले जाएंगे, फिर यही बात है। लोग तो ऊपर के परिणाम देखते हैं कि कितने अच्छे परिणाम है, कितने ऐसे परिणाम है, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, लेकिन अभिप्राय में क्या पड़ा है, ये भयंकर चीज है।
अभिप्राय खुला हो जाता है तो झगड़ा हो जाता है, अभिप्राय खुला पड़ता है तो झगड़ा हो जाता
है, तो खत्म हो गई ना बात, इतना उसमें मेलापन है वो बात बाहर आ जाती है, तो ये गड़बड़ ये खोल के तो यानी तो यही खोल के दिखाते हैं कि तुम उसको द्रविलिंग को मत देख, उसका सत्संग मत कर, ऐसा कहा है प्रवचन सार चरणान योग सूचक चलेगा कि अगर कोई द्रविलिंग धारी साधु देखने में आ गए निरतिचार जो पालन करते हैं उनको तो महाराज दो, वंदन करो, नमस्कार करो, ऐसे तुमको नवदा भक्ति से तो हार दिया जाता है, यही तो विधि है आप देने की, तुमको आहार दान तुम उसको आहार दान करो, फिर उपदेश ग्रहण करने के पहले उसका उपदेश ग्रहण करने के पहले उसकी परीक्षा करो ये भावलिंगी है या द्रविलिंगी है,
उपदेश ग्रहण करने
आहार
तो दे सकते,
हाँ दे सकते, वो द्रविलिंगी हो गए तो लिंगाभास हो गए तो नहीं
ना,
वो तो की तो बात
उपदेश सुनने लायक कब है, इसके लिए दूसरा आगे बढ़ना पड़ेगा,
हाँ पढ़ना पड़ेगा, तुम उसका परिचय करो, उसकी परीक्षा करो, तुमको ये तसल्ली हो कि ये भावलिंगी है, तुम उसका सत्संग करो, अगर भावलिंगी नहीं है तो उसका सत्संग मत करो, तो
ये पहचान तो ज्ञानी ही कर
सकते हैं, तीव्र मुमुक्षु कर सकते हैं, तीव्र मुमुक्षु कर सकते हैं, मुमुक्षु की तीव्रता चाहिए क्योंकि इनकी तो बाह्य शांति बहुत है, इतने शांत होते हैं त्रिविलिंगी वर्तमान परिणाम में बहुत शांत होते हैं, कसाई बंद है ना, अभी तो कोई सहस्त्रांश भी नहीं दिखे, इतने मंद कसाई होते हैं बहुत शांत दिखते हैं, पहचान होना मुश्किल है फिर भी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव का जो विषय है ना वो ऐसा अलग पड़ता है, वो जिस लाइन में वो गया नहीं वो बता नहीं सकेंगे, कह नहीं सकेंगे, दर्शा नहीं सकेंगे, उसको ये पूछे जाए महाराज कैसे अंतर्मुख होना, तो ये पुण्य की बात करेगा, ऐसा रटन करो, ऐसा विकल्प करो, वो करो,
उससे तो पकड़ना
है,
उससे फिर वो पकड़ना आता है,
हाँ पकड़ना आ जाता है, जाते क्यों नहीं आप, मार्ग तो अंतर्मुख का है ना, तो वो मार्ग से वो अनभिज्ञ है, वो भारी भार घूमता है, पता चल जाएगा उसका, नहीं पता चले सवाल ही नहीं, जो दूसरे मिथ्या दृष्टियों है इनका संग करने का तो आभासियों का तो संग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसे फिर जो आभास में खड़े हैं इनका संग करने का तो उसको कुसंग बोले हैं, वहां कुसंग बोला है, तो इसका संग करने से कुसंग हो जाएगा और कुसंग होने से नुकसान ही होता है, लाभ कभी होता ही नहीं, ये बात है।
एक मौसम से चारित्र का
दर्शन होगा, दर्शन का नुकसान, चारित्र होगा तो शायद नुकसान नहीं भी हुए कि क्योंकि वो त्यागी होंगे तो वो भी उसको बताएंगे तुम इसको छोड़ो, तुम इसका व्रत अंगीकार करो, तुम दीक्षा लियो, वो करो, ऐसा ही ले जाएंगे उसको, तो वैरागी है तो उसको वैरागी कराएगा। तो चारित्र में भी नुकसान नहीं भी हो, थोड़ा चारित्र का लाभ भी हो सकता है, लेकिन दर्शन होगा बड़ा नुकसान। विपरीत श्रद्धे के लकड़े फिट हो जाएंगे।
इसको दर्शन मोह में भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण भी कह सकते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण भी कह सकते हैं। हाँ, दर्शन मोह में
दर्शन बुद्धि पूर्वक की भूल ग्रहित मिथ्यात्व में जाती है। ग्रहित का अर्थ यही है कि बुद्धि से नई भूल ग्रहण की, इसका नाम ग्रहित है। फिर ये अन्य मत तो ज्यादा स्थूल हो जाने से होता है। तो अन्य मत में क्या होता है, कुदेवादि का स्थापन करते हैं और सतदेव का निषेध करते हैं, दोनों अन्य मत हैं। सतदेव गुरु शास्त्र का निषेध करना किसी एक का या सबों का, एक में सबों का आ जाता है, और अन्य देव का स्थापन करना, दोनों एक सी बात है, एक अस्ति से है एक नास्ति से है, एक ही सिक्के के दो बाजू हैं, यही ग्रहित है। सूक्ष्म ग्रहित है वो हो जाता है तत्व ज्ञान की भूमिका में ही हो जाता है, तत्व ज्ञान समझने में ग्रहित उल्टा ग्रहण करता है, बुद्धि से विपरीत रुचि से विपरीत ग्रहण करता है, आभास रूप से उसी वक्त ग्रहित हो जाता है। और ये ग्रहित हो जाता है जब ये स्थूल होता है तो फिर अन्य मत की तरह सब बात हो जाती है आगे जा करके।
सत्ता स्वरूप आदि में तो फिर यहाँ तक आता है कि भाई सच्चे देव गुरु हैं, सामने प्रतिमा है, उनको बिना स्वरूप पहचाने माने तो वह भी ग्रहित होता है।
समझी मैं, क्या फिर से प्रश्न करो।
प्रश्न क्या है, मतलब सामने जो जिन्हें प्रतिमा है या गुरु भी है तो वो अपने आप में सच्चे हैं,
अपने आप में
सच्चे हैं,
सत्य है,
हाँ सच्चे, और उनके स्वरूप को बिना पहचाने ही हमने उनको माना तो वह भी ग्रहित मिथ्या।
नहीं, उसके स्वरूप को अन्यथा माना है
तो वही नहीं पहचाना या अन्यथा माना, उसमें क्या फर्क
है? नहीं, इसमें फर्क है बुद्धिपूर्वक, क्या इसलिए शब्द प्रयोग, बुद्धिपूर्वक अन्यथा मान ले, अन्यथा जान ले, जब ग्रहित होता है। अग्रहित तो अनादि से पड़ा है, जैसे पर से सुख होता है, बाहर के पदार्थों से सुख होता है, वो तो अग्रहित अनादि से पड़ा ही है, तो ऐसे तो एक रहित अनादि से पड़ा है, लेकिन बुद्धिपूर्वक उल्टा पकड़ता है तब ग्रहित होता है। तो तत्वज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि लगानी पड़ती है, कि तत्वज्ञान का वैचारिक क्षेत्र ही ऐसा है कि वहां तो बुद्धि का प्रयोग है, और वहां उल्टा पकड़ता है तो उसको ग्रहित हो जाता है। पहले सूक्ष्म तौर से होता है तो पता नहीं चलता है खुद को और दूसरे को भी, बाद में पता दूसरे को तो पड़ जाता है, खुद को पड़े नहीं पड़े दूसरी बात है, दूसरे को पड़ जाता है कि वो बिल्कुल अभी देव का भी निषेध करता है, अभी उल्टा गुरु में भी आ गया है, अभी दूसरे दूसरे देव का भी प्रशंसा करने लग गया है, ये हो जाता है, तो दूसरे को भी पता चल जाएगा। समय बन गया
आदि देव जीवन जय गोपाल कृपा।